Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक युवक बहुत ही गरीब था। उसे लगा कि अब मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो। उसे कहीं से पता चला कि फलानी जगह पे एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं जो तपस्या में बैठे रहते हैं, और यदि उनके पास जाया जाए और उनकी कृपा मिल जाए तो शायद मेरी गरीबी दूर हो सकती है। पहुंचा उस संत के पास। जैसे ही उन्होंने तब से अपनी आंखें खोली, इस युवक ने कहा, महाराज, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, यदि आपकी कृपा हो तो थोड़ी सी मेरे अंदर भी अमीरी आ जाए, कुछ धन मिल जाए। महात्मा जी ने कहा कि उत्तर की दिशा में चले जाना, वहाँ एक पेड़ के नीचे तुम यदि खोदोगे तो वहाँ से तुम्हें कुछ मोहरे मिल जाएंगे, उनसे तुम्हारा एक हफ्ते का समय निकल जाएगा। वो युवक वहाँ चला गया, उसने खोदा, सचमुच वो मोहरे मिले, एक हफ्ते बड़े आराम से निकल गए। फिर से महात्मा जी के पास आया, बोला कि वो एक हफ्ते में पूरे हो गए वो धन जो मिले थे, अब कुछ और दीजिए। उन्होंने कहा कि अब इस दिशा में चले जाना, वहाँ यदि तुम खुदाई करोगे तुम्हें कुछ और मोहरे मिल जाएंगे। वहाँ गया, वहाँ खोदा, मोहरे मिले, एक महीने का समय निकल गया। फिर से वापस पहुंचा, उन्होंने फिर से एक दिशा बता दी कि यहाँ चले जाना, यहाँ खोदोगे एक साल का तुम्हारा बहुत अच्छे से समय निकल जाएगा। वहाँ गया, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी उसे धन की प्राप्ति हो गई। अब उसे लगा कि ये जो महात्मा जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ धन रखा हुआ है, ये खुद ही वहाँ जा कर के धन क्यों नहीं निकाल लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, जो भी सुख सुविधा के साधन हैं उनका उपभोग करते हैं। वापस वो पहुंचा उनके पास और कहा कि महाराज, आपको सब पता है कि कहाँ कहाँ धन है, कहाँ कहाँ मोहरे रखे हुए हैं, आप खुद ही इन्हें खोद कर इनका उपभोग क्यों नहीं करते। तो महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो, तुम जो ये धन प्राप्त करते हो और धन से एक हफ्ते, एक मास या एक वर्ष का समय तुम बिता रहे हो, ये तुम्हें टेम्परेरी सुख देते हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके जो मैं तप कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, वो मुझे परमानेंट खुशी दे रही है, परमानेंट मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। तुम क्या चाहोगे कि तुम्हें टेम्परेरी सुख मिलता रहे और तुम लगातार जीवन भर इसी धन के पीछे भागते रहो, या उस परमानेंट खुशी की ओर बढ़ना चाहोगे, उस सत्य की ओर बढ़ना चाहोगे जो सचमुच जीवन को सार्थक बनाता है। युवक की भी आंखें खुल गई। उसे लगा कि सचमुच हमें ऐसे ही जो ये टेम्परेरी सुख है उनके पीछे ना भाग के परमानेंट खुशी या परमानेंट आनंद या परमानेंट सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जीवन भर हम भागते ही रहते हैं चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, धन के पीछे, चाहनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक हफ्ते के बाद फिर से एक नई इच्छा, एक नई कामना पैदा हो जाती है। एक मास के बाद फिर से जो हमने नई चीज़ ली है वो पुरानी हो जाती है और हमारी मनोस्थिति ज्यों की त्यों बन जाती है। लेकिन यदि हम सचमुच तप के माध्यम से, योग के माध्यम से उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, उस परमानेंट खुशी या आनंद की ओर बढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों के न होने पे भी जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। इसीलिए लगातार हम भी तप की ओर बढ़ रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं भ्राता जी के साथ। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक्स।
वो लोग तो बहुत खुशहाल हैं भ्राता जी सचमुच, जिन्होंने इनके पीछे ना भाग के सत्य के पीछे भागना चाहा और साथ ही तप करके परम आनंद को प्राप्त किया।
बस वो सत्य यही है कि बीज है निराकार परमपिता परमात्मा
जी,
और अगर उससे बहुत प्यार किया जाए, अगर उसको संपूर्ण रूप से जान लिया जाए, यदि उस पर बुद्धि को स्थिर कर दिया जाए, तो सर्व प्राप्तियां पीछे भागने लगेंगी। हमें हफ्ते के लिए या मास साल के लिए इन चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हम दाता को अपना बना लें, अपने प्यार में उसको बांध लें, तो सर्वस्व प्राप्तियां सहज, हमें भागना नहीं पड़ेगा, वो परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आएंगी।
जी जी जी, और इसलिए की शायद समझ की आवश्यकता रहता है जी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो आजकल यही है, ये चीज़ और उसी के पीछे भाग रहे हैं। इस सत्य के पीछे भागने की सचमुच आवश्यकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता रहता है जी कि व्यक्ति को थोड़ी सी ये जो धीरज है ना वो नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ से मुझे इंस्टेंट प्राप्ति हो रही है, ये चीज़ मिल गई, इंस्टेंट खुशी और आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन शायद इस जो तप के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, वहाँ तक जो परमानेंट खुशी चाहते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो वो सोचता है कि शायद कितना समय लगे।
देखिए, इस सत्य ज्ञान की बहुत आवश्यकता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यहाँ इस देह को चलाने वाली एक चेतन शक्ति, और मैं जिसको हम मैं बोलते हैं ना रोज, मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। अब इन सब चीजों के लिए वो भागता है सांसारिक वस्तुओं की ओर, लेकिन सांसारिक वस्तुएं हैं विनाशी, और ये सिद्धांत याद रखना होगा कि विनाशी चीजें अविनाशी आत्मा को सदाकाल का आनंद नहीं दे सकती। वो विनाशी चीजें कभी कभी तो बड़ी कष्टदायी हो जाती हैं। मान लो किसी ने एक बहुत सुंदर कार खरीद ली 5 करोड़ की, आजकल महंगी महंगी कार भी आ रही, लेकिन 2 दिन के बाद ही कहीं एक्सीडेंट हो गया और कार टूट फूट गई, तो उसका जो आनंद था, जो उसकी खुशी थी, मान लो चोट चाट भी लग गई 2-4 लोगों को, तो वो सारा आनंद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मान लो भोजन का आनंद है, वो भी विनाशी है, कोई बहुत स्वादिष्ट चीज जो सचमुच मन को आनंद दे रही हो, हमने खाई, ठीक ठाक, हम हेल्दी भी रहे, लेकिन कल उससे अच्छी चीज न मिली तो वो हमारा आनंद फीका पड़ जाता है, हम पिछले दिन को याद करने लगते हैं। और यदि वो सुंदर चीज हमने ज्यादा खा ली और सारी रात बदहजमी हो गई और हम सो नहीं पाए, वो आनंद भी किरकिरा हो जाता है। इसलिए अविनाशी आत्मा का आनंद भी अविनाशी है, और वो अविनाशी परमात्मा से ही मिलता है। इस सत्य को मनुष्य को जान लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो सांसारिक आनंद की चीजें हैं हम इनका उपयोग न करें, अवश्य करें, पर हम उनके अधीन न हो जाए। एक बहुत अच्छी चीज किसी बहुत अच्छे विद्वान फिलोसोफर ने कही है कि धन संपदा तुम्हारी उत्तम दासी है, लेकिन यदि तुम इसको अपना मालिक बना लोगे तो तुम इसके दास हो गए ना। ये उत्तम दासी है, इसे दासी रहने दो, मालिक तुम हो।
बहुत महत्वपूर्ण बात है दादा जी। लेकिन ये वाली जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि चलिए उस महात्मा की जिसकी हमने शुरुआत की थी, वो तो आनंद ले रहा था, लेकिन अब यहाँ हमें आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ यदि हम चलना शुरू भी करते हैं तो प्रारंभ में यदि आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो लगता है पता नहीं कितने लंबे समय के बाद वो आनंद मिलेगा, क्यों ना ये वाला आनंद ले लिया जाए, इस आनंद को थोड़ा सा हम गौण कर देते हैं, यहाँ क्या हो।
हाँ, वो आनंद सांसारिक आनंद जितना जितना हम लेंगे, हमारी कर्मेंद्रियाँ थोड़ी सी तृप्त भी होंगी और कहीं कहीं उनकी वो आसक्तियाँ बढ़ भी जाएंगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मान लो जलेबी बहुत खाने को मन कर रहा है, खा लिया तो कुछ समय के लिए मन शांत हो गया, लेकिन कुछ का ऐसा होता है जलेबी खाई, कल फिर इच्छा, परसों फिर इच्छा, फिर इच्छा, और मनुष्य उस इच्छा का गुलाम हो जाता है। और ये जो ईश्वरीय आनंद है ये वास्तव में तो फर्स्ट स्टेप से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसा हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे भाई बहनें जो हमारा चैनल का ये प्रोग्राम देखकर ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें भी सुंदर अनुभव हो रहे हैं, उनकी अनेक समस्याएं समाप्त हो रही हैं, उन्हें यह आभास हो रहा है कि तुम आत्मा हो और तुम आनंद स्वरूप हो, आनंद और शांति, सुख और खुशी तुम्हारे अपने अंदर है, तुम इसे बाहर निकल कर न खोजो। ये बहुतों को आभास होने लगा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में हमारे भारत में पहले और फिर सारे संसार में एक ये स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन पैदा हो जाएगा, सब अपनी ओर आएंगे पुनः, जो अपने से दूर चले गए हैं आनंद और सुखों की खोज में, जो इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारे अपने अंदर है, उसे खोज लो, उसमें स्थिर हो जाओ। तो सत्य बात यही है कि आनंद स्पिरिचुअलिटी में है, सच्चा सुख परमात्मा से अपना नाता जोड़ने में है, उसको अपना बनाने में है। इस सुख की ओर सबको बढ़ना चाहिए, बिना ये इंतजार किए हुए कि इसमें लंबा समय लगेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं, ये तत्काल, जैसे मनुष्य मिठाई खाता है तत्काल उसका मुख मीठा होता है ना, ऐसे ही परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो तत्काल वो सुख शांति आनंद अनुभव आने लगेगा।
बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं भ्राता जी ये तुरंत ही ऐसी अनुभूति हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जुड़ते हैं लेकिन वो अनुभूति नहीं कर पाते, कारण कई हो सकते हैं, परमात्मा तो दे रहे हैं लेकिन शायद हम नहीं ले पाते, लेकिन लगातार अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। भ्राता जी कुछ मेल्स आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये कहते हैं, ये भ्राता जी रत्नाकर शेट्टी जी हैं बैंगलोर से, और ये कह रहे हैं कि कई बार योग करते करते योग करना भी एक रूटीन काम की तरह लगने लगता है, कोई विशेष अनुभूति नहीं होती जिसकी शायद हम चर्चा कर रहे थे, फिर धीरे धीरे योग में अरुचि पैदा होने लगती है, ऐसे में क्या किया जाए?
देखिए, इनको जो योग में एक अरुचि हो रही है या योग करना एक औपचारिकता सी लग रही है,
एक रूटीन
वो केवल बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास सुंदर विचारों का फ्लो नहीं होता है। इसका कुछ कारण हो सकता है कि सारे दिन में जो कुछ उसने किया उसके प्रभाव से मन एक डेड स्थिति में आ गया हो। कईयों का मन ऐसी स्थिति में भी आ जाता है जहाँ वो कुछ नहीं सोच पाता और एक डेडनेस जैसी, एक शून्य जैसी स्थिति होती है, कईयों की ये भी होती है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए ज्ञान का सुंदर चिंतन, स्वमान का सुंदर अभ्यास, और इनको मैं राय दूंगा कि ये योग किया करें, पांच स्वरूपों से योग को प्रारंभ करें। पांच स्वरूपों की प्रैक्टिस जिसको हम बार बार चर्चा में ला रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, एक मिनट आत्मा पर फोकस करें, चिंतन करें, मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप, जब हम इस संसार में आए तो हम कैसे थे, उसका चिंतन करें, उसको सामने लाएं, पूज्य स्वरूप, भक्ति काल में हमारे किन किन स्वरूपों की पूजा होती रही, अब मैं क्या हूँ, भगवान मिल गया है, मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गया हूँ, पवित्र आत्मा बन गया हूँ, और फिर मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ता क्या है, डबल लाइट है, इन पांच स्वरूपों का चिंतन करें। चिंतन शुरू होगा और चिंतन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सुंदर होता जाता है, मोस्ट एलिवेटेड होता जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। इन्हें ये करना चाहिए। इनके क्वेश्चन से लग रहा है कि इनका चित किसी विशेष प्रभाव के प्रभाव में जैसे दब जाता है और उसमें या तो एक सूक्ष्म उदासी, जिसको कहते हैं खुशी न होना, मन बैठे हैं बस, मन डल जैसा हो गया है, ऐसी इनकी स्थिति है, इसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है।
जी जी, कई लोग शायद रहते जी ये सोचते होंगे कि हम योग कक्ष में बैठे और हमारा योग लग जाना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हमें एक लक्ष्य लेकर के शायद बैठने की आवश्यकता है कि यदि हम एक घंटे बैठ रहे हैं योग में तो हमें ये अभ्यास करना है, जैसे आपने पांच स्वरूपों की प्रैक्टिस।
बिल्कुल यही सत्य है कि हमारे सामने लक्ष्य हो, मुझे अब ये करना है।
जी जी,
तो चिंतन शुरू होगा और योग अभ्यास में
सहज हो जाएगा। जी प्रता जी, दूसरा हमारे पास मेल इंदौर से आया है शंकर माली जी का। ये कहते हैं कि मैं जब आंखें बंद करके योग तपस्या करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेंटर पर बहनें कहती हैं कि आंखें खोल कर योग करो, क्या मुझे आंखें बंद करके योग करना चाहिए या आंखें खोल के, क्योंकि आंखें जब मैं खोलता हूं तो वैसी अच्छी अनुभूति नहीं होती है, क्या करें?
ये बहुतों को लंबे काल भक्ति काल की प्रैक्टिस है, आंख बंद करके जाप कर रहे हैं, लेकिन मन का भटकना या स्थिर होना, इससे आंख बंद करना और खोलना उससे कोई इसका नाता नहीं है। आंख खोलने का प्रावधान स्वयं श्री बाबा ने, जो सुप्रीम टीचर है, जो हमें योग सिखाते हैं, उन्होंने ही दिया है, और वो इसलिए क्योंकि सारा दिन हम कर्म क्षेत्र पर रहेंगे, तो अगर हम आंख बंद करने के अभ्यासी होंगे तो कर्म क्षेत्र पर हम योग युक्त होने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी आँखों से ही वाइब्रेशंस ज़्यादा बाहर निकलते हैं, अत्यधिक जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे माँ को देखिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार से देख ले तो आँखों से प्यार के वाइब्रेशंस बच्चा ग्रहण कर लेगा और एकदम आनंदित हो जाएगा, गोद में आ जाएगा। तो आँखें इसलिए यदि हम खुली रखेंगे तो हमारे जो सुंदर वाइब्रेशंस हैं वो चारों ओर फैल कर जग का कल्याण करेंगे, प्रकृति को प्योरीफाई करेंगे, इसलिए खुली आंख रखने का आदेश स्वयं भगवान ने दिया। और तीसरी बात है, क्योंकि स्वयं परमात्मा धरा पर आते हैं, वो किसी के तन में आते हैं और वो सबको दृष्टि देते हैं, नज़र से निहाल, तो यदि आंख बंद करके कोई बैठा होगा तो उनकी नज़र से जो निहाल उसको होना था उससे वंचित हो जाएगा। हो सकता है परमात्मा वरदानों का दाता अपनी दृष्टि डालकर कुछ विशेष वरदान देना चाहता हो, या अपनी दृष्टि डालकर उस व्यक्ति को किसी विशेष विघन और समस्या से मुक्त करना चाहता हो लेकिन उसने आंखें बंद की हैं, तो उससे वंचित हो जाएगा। फिर भी अगर इनका आंख बंद करके ही योग अभ्यास अच्छा लगता है तो कुछ समय ये उसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन चलते फिरते भी इनको योग अभ्यास करना चाहिए। और विशेष रूप से जब ये क्लास में संगठित रूप से बैठे हों तब कुछ देर तो इन्हें आँख खोल के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस की बात है, हम में से अनेकों के ये अनुभव हैं कि शुरू में आँख बंद करके योग अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे खोल के करने की प्रैक्टिस की तो अच्छा अभ्यास हो गया। बाकी अगर बिल्कुल नहीं होता तो न कुछ करने से आंख बंद करके यदि होता है अपने घर में या अकेले बैठे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे अभ्यास करें कि आंखें खोल के भी किया जाए, क्योंकि वो कर्म योग की बात जैसे आपने कही है वो। कईयों को शायद ऐसा भी होता होगा पता जी कि आंखें खुली हैं तो और कई चीजें दिख रही होंगी, जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ और हरकतें हो रही हैं, तो ध्यान शायद ऊपर जाने की बजाय वो सामने इन लोगों में अटक जाती है, तो शायद ये भी एक समस्या।
कईयों के लिए ये भी होता है, उनको एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं होती तो उनके चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव होता है। लेकिन आप देख लीजिए, एक लड़की किसी के प्यार में खोई हुई है, उसकी आंखें तो बंद नहीं है, वो खुली है लेकिन खोई है किसी के प्यार में, आसपास क्या हो रहा उसे पता ही नहीं चलेगा।
जी,
हम भी जब परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं तो सचमुच हमारे चारों ओर क्या हो रहा है इसकी हमें अविद्या हो जाती है। बात केवल प्रैक्टिस की है और परमात्मा से सच्ची लगन और प्यार की है।
जी जी जी, चलिए मतलब लगातार एक अभ्यास किया जाए और ऐसे ही प्यार में डूबा जाए जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के प्यार में डूबती है। प्रताप जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है अनुराग जैन जी का है, दिल्ली से। ये कहते हैं कि मुझे विद्यालय से जुड़े हुए 7 वर्ष हो गए हैं। जब मैं ज्ञान मार्ग में आया था तो बहुत अच्छा योग लगता था। लगातार योग से तपस्या से जुड़े हुए प्रश्न है ब्रता जी। कहते हैं ज्ञान मार्ग में आया तो बहुत अच्छा योग लगता था, मैं घंटों तपस्या में बैठ जाया करता था, लेकिन अब योग की वैसी अनुभूति नहीं होती। पहले मैं अतीन्द्रिय आनंद में उड़ता रहता था, ईश्वर के साथ का भी निरंतर अनुभव होता था, लेकिन अब वो अनुभूतियाँ गायब हो गई हैं। ऐसा क्यों होता है और पुनः वैसी अनुभूति कैसे हो सकती है, इसके लिए कृपया कुछ मार्गदर्शन।
हाँ, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है और कईयों के साथ ऐसा हो रहा है
जी।
जब मनुष्य ज्ञान मार्ग पर प्रथम बार आता है तब उसको एक बहुत ज्यादा खुशी और ईश्वरीय नशा मिलता है, भगवान मिल गया, वाह, जन्म जन्म का भाग्य बनाने का मार्ग मिल गया, अरे बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी तपस्याओं के बाद, बड़ी भक्ति के बाद भगवान मिला है, अब तो बस मगन हो जाना, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। इसलिए योग अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने साथियों को देखने लगता है, इसको कहते हैं प्रदर्शन, और फिर उनका चिंतन करने लगता है, अरे मैं तो 6 मास से ही ज्ञान मार्ग पे आया हूँ, ये तो 10 साल से चल रहे हैं, ये तो कैसे हैं। पर जैसे ये सोचा ना, ये कैसे हैं, ये तो करते ही
मतलब कमियां देखने लगते,
कमियां देखी
जी, जी।
ये तो योग ही नहीं करते, ये तो बुरा बोलते रहते हैं, ये तो खाने के समय भी योग युक्त नहीं रहते, तो बस उसका इफेक्ट मनुष्य पर आने लगा। इनके साथ भी यही हुआ होगा, इन्होंने दूसरों को देखना प्रारंभ कर दिया और जो लगन थी एक बहुत ज्यादा वो ढीली कर दी। ये मनुष्य कंपेरिजन जो करता है ना कि ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, चाहे वो ये ना सोचे मैं क्यों करूं, पर ये एक सूक्ष्म रूप से सटिल इफेक्ट होता है, ये नहीं कर रहा, ये 20 साल से है, ये भी नहीं कर रहा है। इससे मुक्त होकर अपने एक लक्ष्य को महान बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे एक होशियार विद्यार्थी ये कभी नहीं सोचता कि ये लोग कॉलेज में आ ही नहीं रहे, देखा ये लोग पढ़ ही नहीं रहे, वो सोचता है पढ़े ना पढ़े मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मेरा अपना लक्ष्य, उनका अपना लक्ष्य, तो हम भी गॉडली स्टूडेंट हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज जो ऐसे मनुष्यों के साथ होती है, अमृत वेला ढीला हो जाना, कामकाज में बहुत व्यस्त हो जाना, कहीं से सुनते रहते हैं अरे सारा दिन तुम इसमें ही लगे रहते हो, बिजनेस पे भी तो ध्यान दो, तो फिर रात के 12 बजे तक बिजनेस चालू और सवेरे 6 बजे उठना, तो अमृत वेला मिस करने से योग का रस समाप्त हो जाता है। कितना भी अच्छा योग का अभ्यासी हो, यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में योग न करे, लंबा काल उसका मिस हो जाए, तो उसकी सारी स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे ही तीसरी बात मुरली मिस होने लगी होगी, ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत बड़ा बल है, वो हमारी गाइडलाइन है, जरा सोच के तो देखें भगवान गाइड करता है रोज। अगर एक दिन योग सीखने सिखाने से काम हो जाता तो वो रोज गाइड क्यों करता? तो इसके लिए एक लंबी गाइडेंस की जरूरत है, अभी नहीं चाहिए। फिर से रोज सवेरे 4 बजे उठना प्रारंभ करें। रात को सोने से पहले एक 10-15 मिनट भी अव्यक्त महावाक्यों की स्टडी करें, जो भगवान के बोल हैं उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने। आजकल वो सीडी भी बनी हुई है, सुन लें उस आवाज में तो पुनः इनको जागृति हो जाएगी। और फिर डेली क्लास करें और अपने लक्ष्य को रिवाइज करें कि अगर मैं योग युक्त रहूंगा तो मेरा कारोबार भी फर्स्ट क्लास चलेगा। अपने को ट्रेंड कर दें, अपने से बात करें, मुझे किसी को देखना नहीं है। यदि कोई फेलियर स्टूडेंट है तो मैं थोड़ा ही फेल होऊंगा, मेरा लक्ष्य पासवी डोनर होना है। इस तरह का स्वयं एकांत में एक हफ्ता करें, बस एक हफ्ता एकांत में 15-20 मिनट लेकर अपने से बात करें, अपनी उमंगों को फिर से रिवाइज करें, अपने लक्ष्य को फिर से याद करें, अमृत वेले उठे, बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी, 2-3 दिन में ही ये पुनः अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त कर लेंगे।
जी 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 जी, बहुत महत्वपूर्ण बात भ्राता जी आपने कह दी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि अब अनुभव नहीं हो रहे हैं तो शायद भविष्य में भी ऐसे अनुभव नहीं होंगे, तो शायद एक दिल शिकस्त वाली जो स्थिति है वो बनने लगती है। इन सुंदर अभ्यासों से ये बाहर आ सकते हैं। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है, ये कहते हैं, अजय साहू जी हैं, भुवनेश्वर से हैं, कहते हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ योगी बनना चाहता हूँ, तपस्वी बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किन धारणाओं पर विशेष ध्यान देना होगा? कुछ धारणाओं की बातें जो इन्हें श्रेष्ठ तपस्वी बने।
देखिए, प्रश्न बहुत गंभीर है
जी।
श्रेष्ठ योगी बनना, हम इसकी इस इच्छा को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि भगवान को भी महान योगियों की जरूरत है। जो जितना श्रेष्ठ योगी है, परमात्मा उन्हें उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो योग के वाइब्रेशंस के द्वारा चारों ओर के वातावरण को और प्रकृति को शुद्ध बनाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसलिए भगवान के इस दिव्य कार्य में वो आत्माएं बहुत मददगार हैं जो श्रेष्ठ योगी हैं। श्रेष्ठ योगी बनने का संकल्प सबको आता भी नहीं, और बहुतों के साथ ये होता है कि संकल्प आते हुए उन्हें ये मार्ग भारी लगता है। तो इन्हें पहला काम करना होगा अपना एक चार्ट बनाना, 5-पॉइंट चार्ट बना ले, 7-पॉइंट चार्ट बना ले, हर घंटे का चार्ट बनाएं कि मुझे हर घंटे में इतना योग करना है, कर्म योग करना है। बैठने का भी नियम बना ले, 4 बार 20-20 मिनट ये सारे दिन में अवश्य बैठें। योग कक्ष बने हुए अपने घर में भी ये कोई ऐसा स्थान बना ले, और एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे अपने योग को 4 घंटे तक ले चलना है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। भले ये लक्ष्य 6 मास का हो, जरूरी नहीं, ये 2-4 दिन
में धीरे धीरे बढ़ाते चले अपने।
और इसके पीछे जो धारणाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसा इन्होंने पूछा है। संसार की ओर से आंखें बंद करनी पड़ेंगी, ऐसी स्थिति बना लें, ऐसा चिंतन करें, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार से मान सम्मान की कामना, संसार से बहुत सारे साधनों की प्राप्ति की कामना, इन सब को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि त्यागी ही श्रेष्ठ और सहज तपस्वी बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात। दूसरी चीज, व्यर्थ सुनने के लिए अपने कान बंद, जिसे कहते हैं ना, कान और आंखें बंद करके जियो संसार में, रहेंगी तो ये खुली, लेकिन हमें वो चीज नहीं देखनी है जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमें वो चीज नहीं सुननी है जो अननेसेसरी है, जो वेस्ट है। तो कर्मेंद्रियों के इन दोनों रसों से स्वयं को मुक्त करेंगे, साथ साथ अंतर्मुक्ता, बहुत कम बोलना, अपना कार्य करना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या करना। साथ में मान लो इनकी लौकिक जॉब 8 घंटे की है, उसे पहले और उसके बाद ये अपना संपूर्ण टाइम योग अभ्यास में लगा दें। दूसरा, अपने मन में जिस एक इम्पोर्टेंट धारणा की जरूरत योग के मार्ग पे चलने वालों को होती है, सभी के लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं। यदि अवगुणी दृष्टि होगी, यदि भावनाओं में थोड़ी भी निगेटिविटी होगी, तो योग टूटता ही रहेगा। के लिए सब आत्माएं हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, ऐसी सुंदर भावनाएं, सब हमारे अपने हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, वी आर हैप्पी, ये नहीं वो आगे बढ़ रहा है तो खुशी चली गई,
ईर्ष्या
बहुतों की ये होती है, दूसरा आगे बढ़ रहा है इनकी खुशी जा रही है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। दूसरा आगे बढ़ रहा, वाह वाह कितना भाग्यवान है ये व्यक्ति, निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसी शुभ भावनाएं, इन सब चीजों पे यदि गौर करेंगे, एक इम्पोर्टेंट धारणा पर और इन्हें ध्यान देना है, क्योंकि संसार में इम्प्योरिटी बहुत बढ़ी हुई है। देह दिखते हैं चारों ओर, देह का आकर्षण होता है मनुष्य को, लेकिन ये अब हर देह में मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करें, इसी के साथ साथ स्वमान की प्रैक्टिस करें, तो इनकी जो ये श्रेष्ठ इच्छा है, सचमुच ये तो भगवान की इच्छा है कि मुझे कुछ योगी आत्माएं चाहिए संसार में, जो संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएं, जो संसार के लिए पीस हाउस बन जाएं, जो मेरे इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दें, तो भगवान भी इनकी इस इच्छा पे ही राजी है, उसकी भी ब्लेसिंग्स इनको मिलती रहेंगी, और हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी आपकी शुभकामनाओं के लिए, और सुंदर धारणाएं जो आपने बताई हैं, सचमुच इस पे ध्यान दिया जाए तो श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ तपस्वी बनना सहज हो जाएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। मित्रों, बहुत ही गहरी और सुंदर बात लास्ट में मिली है हमें कि किन बातों को धारण किया जाए तो तपस्या बहुत सहज हो जाएगी। धारणाएं बहुत ही सुंदर हैं कि कैसे हम अंतर्मुखी रहें, सबके लिए शुभ भावनाएं रखें, अपनी आँखें और जो कान हैं उन पे भी हम संयम रखें, क्योंकि बाहरी चीज़ें ना जाएं, क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और निगेटिव आती रहती हैं। एक बार मेढकों की रेस रखी गई थी और एक पोल था जिस पे उनको चढ़ना था, अब उस पे ग्रीस लगा दी गई थी तो चढ़ते थे मेढक और फिसल के गिर जाया करते थे। अब बाहर से सभी लोग चिल्ला रहे थे कि हाँ चढ़ो चढ़ो चढ़ो, रेस शुरू हो गई थी, बहुत सारे लोग चढ़ते थे गिरते थे चढ़ते थे गिरते थे, लेकिन एक जो मेढक था लगातार प्रयास करता रहा, बाकी सब ने छोड़ दिया क्योंकि लोग कहने लगे अरे नहीं चढ़ पाओगे, बहुत ऊँचा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन एक लगातार प्रयास करता रहा करता रहा करता रहा और फाइनली वो उस पोल पर चढ़ ही गया। अब जब वो विनर घोषित किया गया, लोगों ने वाहवाही की, तो पता चला कि वो मेढक बहरा था, अर्थात सुन नहीं सकता था। तो क्या होता है कि कई बार बाहरी लोगों की जो बातें हैं, कमेंट्स हैं या नेगेटिविटी है, उसके कारण हमें लगता है कि शायद हम तपस्या या योग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राधा जी ने जैसे आज कहा है, कानें बंद कर लें, इस व्यर्थ और नेगेटिव से सचमुच लक्ष्य को प्राप्त करना सहज हो जाएगा, और तब सहज और हो जाता है जब परम शक्ति हमारे साथ हैं, उनकी भी श्रेष्ठ कामना है जैसे इन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ योगी बने। तो तपस्या के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिएगा, तपस्या की सुंदर चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे, बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।